क्रमांक 51। आकाश पाताल भले एक हो जाए, परंतु भाई तू अपनी ध्येय को मत चूकना, अपने प्रयत्न को मत छोड़ना। आत्मार्थ को पोषण मिले वह कार्य करना, जिस ध्येय पर आरूढ़ हुआ उसे पूर्ण करना, अवश्य सिद्धि होगी। क्रमांक 52। शरीर शरीर का कार्य करता है, आत्मा आत्मा का कार्य करता है, दोनों भिन्न भिन्न स्वतंत्र है। उनमें यह शरीरादि मेरे ऐसा मानकर सुख दुख न कर ज्ञाता बन जा। देह के लिए अनंत भव व्यतीत हुए, अब संत कहते हैं कि अपने आत्मा के लिए यह जीवन अर्पण कर। क्रमांक 53। निवृत्तिमय जीवन में प्रवृत्तिमय जीवन नहीं सुहाता। शरीर का रोग मिटना हो तो मिटे, परंतु उसके लिए प्रवृत्ति नहीं सुहाती। बाहर का कार्य उपाधि लगता है, रुचता नहीं। क्रमांक 54। अनुकूलता में नहीं समझता तो भाई, अब प्रतिकूलता में तो समझ। किसी प्रकार समझ समझ और वैराग्य लाकर आत्मा में जा। क्रमांक 55। चैतन्य की भावना कभी निष्फल नहीं जाती, सफल ही होती है। भले ही थोड़ा समय लगे, किंतु भावना सफल होती ही है। क्रमांक 56। जीव स्वयं पूरा खो गया है, वह नहीं देखता, और एक वस्तु खो गई तो मानो स्वयं पूरा खो गया, रुक गया। रुपया घर शरीर पुत्रादि में तू रुक गया है। अरे विचार तो कर कि तू सारे दिन कहाँ रुका रहा, बाहर का बाहर ही रुक गया। तो भाई वहां आत्म प्राप्ति कैसे होगी। क्रमांक 57। पूज्य गुरुदेव की श्रीमुख से स्वयं जिस तत्व को ग्रहण किया हो उसका मंथन करना चाहिए। निवृत्ति काल में अपनी परिणति में रस आए, ऐसी पुस्तकों का पठन करके अपनी लगन को जागृत रखना चाहिए। आत्मा की ध्येय पूर्वक अपनी परिणति में रस आए, ऐसे विचार मंथन करने पर अंतर से अपना मार्ग मिल जाता है। क्रमांक 58। ज्ञानी को दृष्टि अपेक्षा से चैतन्य एवं राग की अत्यंत भिन्नता भासती है। यद्यपि वे ज्ञान में जानते हैं कि राग चैतन्य की पर्याय में होता है। क्रमांक 59। जिस जीव का ज्ञान अपने स्थूल परिणामों को पकड़ने में काम न करे, वह जीव अपने सूक्ष्म परिणामों को कहां से पकड़ेगा, और सूक्ष्म परिणामों को न पकड़े तो स्वभाव कैसे पकड़ में आएगा। ज्ञान को सूक्ष्म तीक्ष्ण करके स्वभाव को पकड़े तो भेद विज्ञान हो। क्रमांक 60। अनादिकाल से अज्ञानी जीव संसार में भटकते भटकते सुख की लालसा में विषयों के पीछे दौड़ते दौड़ते अनंत दुखों को सहता रहता है। कभी उसे सच्चा सुख बतलाने वाले मिले तो शंका रखकर अटक गया, कभी सच्चा सुख बतलाने वाले की उपेक्षा करके अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त करने से वंचित रहा, कभी पुरुषार्थ किए बिना अटका रहा, कभी पुरुषार्थ किया भी तो थोड़े से पुरुषार्थ के लिए वहां से अटका और गिरा। इस प्रकार जीव अपना स्वरूप प्राप्त करने में अनंत बार अटका। पुण्योदय से यह देह प्राप्त हुआ, यह दशा प्राप्त हुई, ऐसे सत्पुरुष का योग मिला। अब यदि पुरुषार्थ नहीं करेगा तो किस भव में करेगा? हे जीव, पुरुषार्थ कर। ऐसा सुयोग एवं सच्चा आत्मस्वरूप बदलाने वाले सत्पुरुष बार बार नहीं मिलेंगे। क्रमांक 61। जिसे सचमुच ताप लगा हो, जो संसार से उब गया हो, उसकी यह बात है। विभाव से उब जाए और संसार का त्रास लगे तो मार्ग मिले बिना नहीं रहता। कारण दे तो कार्य प्रकट होता ही है। जिससे जिसकी रुचि रस हो, वहां उसका समय कट जाता है। रुचि अनुयायी वीर्य। निरंतर ज्ञायक की मंथन में रही, दिन रात उसके पीछे पड़े तो वस्तु प्राप्त हुए बिना न रही। क्रमांक 62। जीव ज्ञायक के लक्ष्य से श्रवण करे, चिंतवन करे, मंथन करे, उसे भले कदाचित सम्यक दर्शन न हो, तथापि सम्यक्त्व सन्मुखता होती है। अंदर दृढ़ संस्कार डाले। उपयोग एक विषय में न टिके तो अन्य में बदले। उपयोग सूक्ष्म से सूक्ष्म करे। उपयोग में सूक्ष्मता करते करते चैतन्य तत्व को ग्रहण करते हुए आगे बढ़े। वह जीव क्रम से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। क्रमांक 63। जैसा बीज बोए वैसा वृक्ष होता है। आम का बीज बोए तो आम का वृक्ष होगा और अकौवा का बीज बोएगा तो अकौवे का वृक्ष उगेगा। जैसा कारण देंगे वैसा कार्य होता है। सच्चा पुरुषार्थ करे तो सच्चा फल मिलता ही है। क्रमांक 64। अंतर में चैतन्य तत्व नमस्कार करने योग्य है। वही मंगल है। वही सर्व पदार्थों में उत्तम है। भव्य जीवों को वह आत्मतत्व ही एक शरण है। बाह्य में पंच परमेष्ठि, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु नमस्कार करने योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मा की साधना की है। वे मंगल रूप है। वे लोक में उत्तम हैं। वे भव्य जीवों की शरण हैं। क्रमांक 65। देव गुरु की वाणी और देवशास्त्र गुरु की महिमा चैतन्य देव की महिमा जागृत करने में, उसके गहरे संस्कार दृढ़ करने में तथा स्वरूप प्राप्ति करने में निमित्त हैं। क्रमांक 66। बाह्य में सब कुछ हो, उसमें भक्ति उल्लास के कार्य हो, उनमें भी आत्मा का आनंद नहीं है। जो तल में से आए वही आनंद सच्चा है। क्रमांक 67। प्रत्येक प्रसंग में शांति शांति और शांति ही लाभदायक है। क्रमांक 68। पूज्य गुरुदेव की वाणी मिले वह एक अनुपम सौभाग्य है। मार्ग बतलाने वाले गुरु मिले और उनकी वाणी सुनने को मिली वह मुमुक्षुओं का परम सौभाग्य है। प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न दो बार ऐसा उत्तम सम्यक तत्व सुनने को मिलता है, इस जैसा दूसरा कौन सा सद्भाग्य होगा। श्रोता को अपूर्वता लगे और पुरुषार्थ करे तो वह आत्मा के समीप आ जाए और जन्म मरण टल जाए। ऐसी अद्भुत वाणी है। ऐसा जो श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह मुमुक्षु जीवों को सफल कर लेने योग्य है। पंचम काल में निरंतर अमृत झरती गुरुदेव की वाणी भगवान का विरह बुलाती है। क्रमांक 69। प्रयोजन तो एक आत्मा का ही रखना। आत्मा का रस आए वहां विभाव का रस झर जाता है। क्रमांक 70। सब कुछ आत्मा में है, बाहर कुछ नहीं है। तुझे कुछ भी जानने की इच्छा होती हो तो तू अपनी आत्मा की साधना कर। पूर्णता प्रकट होने पर लोकालोक उसमें ज्ञेय रूप से ज्ञात होगा। जगत जगत में रहे तथापि केवल ज्ञान में सब ज्ञात होता है। जानन हर तत्व पूर्णता रूप परिणमने पर उसकी जानकारी से बाहर कुछ नहीं रहता और साथ ही साथ आनंद आदि अनेक नवीनताएं प्रकट होती हैं। क्रमांक 71। धन्य वह निर्ग्रंथ मुनिदशा। मुनिदशा अर्थात केवल ज्ञान की तलहटी। मुनि को अंतर में चैतन्य के अनंत गुण पर्यायों का परिग्रह होता है। विभाव बहुत छूट गया होता है। बाह्य में श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारणभूत बने से देह मात्र परिग्रह होता है। प्रतिबंध रहित सहज दशा होती है। शिष्यों को बोध देने का अथवा ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। स्वरूप में लीनता वृद्धिंगत होती है। क्रमांक 72। अखंड द्रव्य को ग्रहण करके प्रमत अप्रमत स्थिति में झूले वह मुनिदशा। मुनिराज स्वरूप में निरंतर जागृत है। मुनिराज जहाँ जागते हैं वहाँ जगत सोता है। जगत जहाँ जागता है वहाँ मुनिराज सोते हैं। मुनिराज जो निश्चय नयाश्रित मोक्ष की प्राप्ति करे। क्रमांक 73। द्रव्य तो निवृत्त ही है, उसका दृढ़ता से अवलंबन लेकर भविष्य के विभाव से भी निवृत्त हो। मुक्ति तो जिनके हाथ में आ गई है ऐसे मुनियों को भेद ज्ञान की तीक्ष्णता से प्रत्याख्यान होता है। क्रमांक 74। यदि तेरी गति विभाव में जाती है तो उसे शीघ्रता से चैतन्य में लगा। स्वभाव में आने से सुख और गुणों की वृद्धि होगी। विभाव में जाने से दुख और गुणों की हानि होगी। इसलिए शीघ्रता से स्वरूप में गति कर। क्रमांक 75। जिन्होंने चैतन्य धाम को पहचान लिया है वे स्वरूप में ऐसे सो गए कि बाहर आना अच्छा ही नहीं लगता। जैसे अपने महल में सुख से रहने वाले चक्रवर्ती राजा को बाहर निकलना सुहाता ही नहीं, वैसे ही जो चैतन्य महल में विराज गए हैं उन्हें बाहर आना कठिन लगता है, भार रूप लगता है, आँख से रेत उठवाने जैसा दुष्कर लगता है। जो स्वरूप में ही आसक्त हुआ उसे बाहर की आसक्ति टूट गई है। क्रमांक 76। तस्वीर खींची जाती है, वहाँ जैसे चेहरे के भाव होते हैं तदनुसार स्वयमेव कागज पर चित्रित हो जाते हैं। कोई चित्रण करने नहीं जाता, उसी प्रकार कर्म के उदय रूप चित्रकारी सामने आए तब समझना कि मैंने जैसे भाव किए थे वैसा ही यह चित्रण हुआ है। यद्यपि आत्मा कर्म में प्रवेश करके कुछ करता नहीं है, तथापि भाव के अनुरूप ही चित्रण स्वयं हो जाता है। अब दर्शन रूप ज्ञान रूप चारित्र रूप परिणमन कर तो संवर निर्जरा होगी। आत्मा का मूल स्वभाव दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। उसका अवलंबन करने पर द्रव्य में जो शक्ति रूप से विद्यमान है वह व्यक्ति रूप से प्रकट होगा। क्रमांक 77। अनंत काल से जीव को स्व से एकत्व और पर से विभक्तपने की बात रुचि ही नहीं। जीव बाहर से भूसी कूटता रहता है, परंतु अंदर का जो कस आत्मा है उसे नहीं खोजता। राग द्वेष की भूसी कूटने से क्या लाभ है, उसमें से दाना नहीं निकलेगा। पर से एकत्व बुद्धि तोड़कर भिन्न तत्व को अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष एवं असंयुक्त आत्मा को जाने तो कार्य हो। क्रमांक 78। स्वरूप की लीला जात्यंतर है। मुनिराज चैतन्य के बाग में क्रीड़ा करते करते कर्म के फल का नाश करते हैं। बाह्य में आसक्ति थी, उसे तोड़कर स्वरूप में मंथर, स्वरूप में लीन हो गए हैं। स्वरूप ही उनका आसन, स्वरूप ही निद्रा, स्वरूप ही आहार है। वे स्वरूप में ही लीला, स्वरूप में ही विचरण करते हैं। संपूर्ण श्रामण्य प्रकट करके वे लीला मात्र में श्रेणी मांडकर केवल ज्ञान प्रकट करते हैं। क्रमांक 89। शुद्ध स्वरूप आत्मा में मानव विकार अंदर प्रविष्ट हो गए हो ऐसा दिखाई देता है, परंतु भेद ज्ञान प्रकट करने पर वे ज्ञान रूपी चैतन्य दर्पण में प्रतिबिंब रूप हैं। ज्ञान वैराग्य की अचिंत शक्ति से पुरुषार्थ की धारा प्रकट कर यथार्थ दृष्टि द्रव्य पर दृष्टि करके ऊपर आ जा। चैतन्य द्रव्य निर्मल है। अनेक प्रकार के कर्म के उदय, सत्ता, अनुभाग तथा कर्म निमित्तक विकल्प आदि तुझसे अत्यंत भिन्न है। क्रमांक 80। विधि और निषेध के विकल्प जाल को छोड़ मैं बंधा हूँ, मैं बंधा नहीं हूँ, वह सब छोड़कर अंदर जा, अंदर जा, निर्विकल्प हो, निर्विकल्प हो। क्रमांक 81। जैसे स्वभाव से निर्मल स्फटिक में लाल काले फूल के संयोग से रंग दिखते हैं, तथापि वास्तव में स्फटिक रंगा नहीं गया है, वैसे ही स्वभाव से निर्मल आत्मा में क्रोध मानादि दिखाई दे, तथापि वास्तव में आत्मद्रव्य उनसे भिन्न है, वस्तु स्वभाव में मलिनता नहीं है। परमाणु पलटकर वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित नहीं होता, वैसे ही वस्तु स्वभाव नहीं बदलता। यह तो पर से एकत्व तोड़ने की बात है। अंतर में वास्तविक प्रवेश कर तो पर से पृथकता हो। क्रमांक 82। मैं तो दर्पण की भांति अत्यंत स्वच्छ हूं, विकल्प के जाल से आत्मा मलिन नहीं होता। मैं तो विकल्प से भिन्न निर्विकल्प आनंद घन हूँ, ज्यों का त्यों पवित्र हूँ। इस प्रकार अपने स्वभाव की जाति को पहचान। तू विकल्प से मलिन होकर मलिनता मानकर भ्रमणा में ठगा गया है। दर्पण की भांति जाति से तो स्वच्छ ही है। निर्मलता के भंडार को पहचान तो एक के बाद एक निर्मलता की पर्यायों का समूह प्रकट होगा। अंतर में ज्ञान और आनंद आदि की निर्मलता ही भरी है। क्रमांक 83। अंतर में आत्मा मंगल स्वरूप है। आत्मा का आश्रय करने से मंगल स्वरूप पर्याय प्रकट होंगी। आत्मा ही मंगल, उत्तम और नमस्कार करने योग्य है। इस प्रकार यथार्थ प्रतीति कर और उसी का ध्यान कर तो मंगलता एवं उत्तमता प्रकट होगी। क्रमांक 84। मैं तो उदासीन ज्ञाता हूँ, ऐसी निवृत्त दशा में ही शांति है। स्वयं अपने को जाने और पर का अकर्ता हो तो मोक्ष मार्ग की धारा प्रकटे और साधक दिशा का प्रारंभ हो। क्रमांक 85। शुद्ध द्रव्य पर दृष्टि देने से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट होते हैं। वे न प्रकटे तब तक और बाद में भी देव शास्त्र, गुरु की महिमा, स्वाध्याय आदि साधन होते हैं। बाकी तो जो जिसमें हो उसमें से वह आता है, जो जिसमें न हो वह उसमें से नहीं आता। अखंड द्रव्य की आश्रय से सब प्रकट होता है। देव गुरु मार्ग बतलाते हैं, परंतु सम्यक दर्शन कोई दे नहीं देता। क्रमांक 86। दर्पण में जब प्रतिबिंब पड़े उसी काल उसकी निर्मलता होती है, वैसे ही विभाव परिणाम के समय ही तुझ में निर्मलता भरी है। तेरी दृष्टि चैतन्य के निर्मलता को न देखकर विभाव में तन्मय हो जाती है, वह तन्मयता छोड़ दे। क्रमांक 87। मुझे पर की चिंता का क्या प्रयोजन, मेरा आत्मा सदैव अकेला है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। भूमिका अनुसार शुभ भाव आए, परंतु अंतर में एकाकी पने की प्रतीति रूप परिणति निरंतर बनी रहती है। क्रमांक 88। मैं तो लेप रहित चैतन्य देव हूँ। चैतन्य को जन्म नहीं है, मरण नहीं है, चैतन्य तो सदा चैतन्य ही है। नवीन तत्व प्रकट हो तो जन्म कहलाए, चैतन्य तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से चाहे जैसे उदय में सदा निर्लेप अलिप्त ही है। फिर चिंता काहे की, मूल तत्व में तो कुछ प्रविष्ट हो ही नहीं सकता। क्रमांक 99। मुनिराज को एकदम स्वरूप रमणता जागृत है। स्वरूप कैसा है? ज्ञान आनंद आदि गुणों से निर्मित है। पर्याय में समता भाव प्रकट है। शत्रु मित्र के विकल्प रहित है। निर्मानता है, देह जाए पर माया होए न रोम में। सोना हो या तिनका दोनों समान है, चाहे जैसे संयोग हो। अनुकूलता में आकर्षित नहीं होते, प्रतिकूलता में खेद नहीं करते। ज्यों ज्यों आगे बढ़े त्यों त्यों समरस भाव विशेष प्रकट होता जाता है। क्रमांक 90। संसार की अनेक अभिलाषा रूप क्षुधा से दुखित मुसाफिर, तू विषयों के लिए क्यों तरसता है? वहां तेरी भूख शांत नहीं होगी। अंतर में अमृत फलों का चैतन्य वृक्ष लगा है, उसे देख तो अनेक प्रकार की मधुर फल एवं रस तुझे प्राप्त होंगे, तू तृप्त तृप्त हो जाएगा। क्रमांक 91। आहा, आत्मा अलौकिक चैतन्य चंद्र है, जिसका अवलोकन करने से मुनियों को वैराग्य उछल पड़ता है। मुनि शीतल शीतल चैतन्य चंद्र को निहारते हुए अगाते ही नहीं, थकते ही नहीं। क्रमांक 92। रोग मूर्ति शरीर के रोग पौतकलिक है, आत्मा से सर्वथा भिन्न है। संसार रूपी रोग आत्मा की पर्याय में है। मैं सहज ज्ञायक मूर्ति हूँ। ऐसी चैतन्य भावना, यही मनन, यही मंथन, ऐसी ही स्थिर परिणति करने से संसार रोग का नाश होता है। क्रमांक 93। ज्ञानी को दृष्टि द्रव्य सामान्य पर ही स्थिर रहती है। भेद ज्ञान की धारा सतत बहती है। क्रमांक 94। ध्रुव तत्व में एकाग्रता से ही निर्मल पर्याय प्रकट होती है, विभाव का अभाव होता है। क्रमांक 95। मुनि असंग रूप से आत्मा की साधना करते हैं, स्वरूप गुप्त हो गए हैं। प्रचुर स्वसंवेदन ही मुनि का भावलिंग है। क्रमांक 96, आत्मा ही एक सार है, अन्य सब निसार है। सब चिंता छोड़कर एक आत्मा की ही चिंता कर, कुछ भी करके चैतन्य स्वरूप आत्मा को पकड़, तभी तू संसार रूपी मगर के मुंह में से छूट सकेगा। क्रमांक 97, पर पदार्थ को जानने से ज्ञान में उपाधि नहीं आ जाती। तीन काल तीन लोक को जानने से सर्वज्ञता ज्ञान की परिपूर्णता सिद्ध होती है। वितराग हो जाए उसे ज्ञान स्वभाव की परिपूर्णता प्रकट होती है। क्रमांक 98, दृष्टि एवं ज्ञान यथार्थ कर, तू अपने को भूल गया है। यदि बतलाने वाले गुरु मिले तो तुझे उनकी दरकार नहीं है। जीव को रुचि हो तो गुरु वचनों का विचार करे, स्वीकार करे और चैतन्य को पहचाने। क्रमांक 99, यह तो पंखी का मेला जैसा है, इकट्ठे हुए हैं वे सब अलग हो जाएंगे। आत्मा एक शाश्वत है, अन्य सब अध्रुव है, बिखर जाएगा। मनुष्य जीवन में आत्मकल्याण कर लेना योग्य है। क्रमांक 100, मैं अनादि अनंत मुक्त हूँ। इस प्रकार शुद्ध आत्मद्रव्य पर दृष्टि देने से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। द्रव्य तो मुक्त है, मुक्ति की पर्याय को आना हो तो आए। इस प्रकार द्रव्य के प्रति आलंबन और पर्याय के प्रति उपेक्षा वृत्ति होने पर स्वाभाविक शुद्ध पर्याय प्रकट होती ही है।